جزاكم الله. ريكوردينج شروع کرنے کا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا الى الاخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو کل ہم نے ان آیات کا نمبر 23 سے 31 آیت تک کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا معرفۃ القرآن والیوم 6 468 پیج نمبر سے. تو اب ہم خلاصہ تفسیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے تحت ترجمہ بھی دوبارہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ اب کسی اور شخصیت کا کیا ہوا ترجمہ ہے. جو اصل ترجمہ جو یہاں پہ ترجمے کے طور پہ لکھا ہوا ہے وہ حضرت شیخ الہند حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہوا ترجمہ ہے, اور خلاصہ تفسیر میں جو ترجمہ اور ساتھ ساتھ بریکٹس کے اندر جو مختصر تفسیر ہوتی ہے وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک ڈفرنٹ یعنی ترجمہ ہے. ظاہر ہے کچھ الفاظ کا فرق ہوتا ہے, اور ہر مفسر ہر عالم جو ہے وہ اس کی تحقیق بھی تھوڑی بہت دوسری علماء سے ڈفر کرتی ہے, مختلف ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہمیں ذرا ملٹیپل تھوڑے سے علماء کے اوپینینز بھی دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. تو خلاصہ تفسیر میں حضرت لکھتے ہیں پہلی آیت اللہ عمل من عمل فجعلنا کہ اور ہم نے اور ہم روز ان کے یعنی کفار کے نیک کاموں کی طرف جو کہ دنیا کر چکے تھے متوجہ ہوں گے, سو ان کو اعلانیہ طور پر ایسا بیکار کر دیں گے جیسے پریشان غبار کہ کسی کام نہیں آتا. اسی طرح ان کفار کے اعمال پر کچھ ثواب نہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو متوجہ ہوں گے کا مطلب یہ کہ یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایک کام نپٹا کر کے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر دوسرے کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, جس میں کہ تدریجی معاملہ ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں نا لینئر, پہلے یہ ہوا پھر اس کے بعد دوسرا کام ہوگا پھر اس کے بعد تیسرا کام ہوگا. تو اس طریقے سے نا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر ان کے اعمال کا جب حساب کرنا شروع کریں گے نا, تو جو کافر ہوں گے مشرک ہوں گے منکر ہوں گے انکار کرنے والے لوگ, تو ان کے جو بھی نیک اعمال تھے اس دنیا کے اندر, نیک اعمال کیا ہو سکتے ہیں کافر کے, نیک اعمال سے یہاں پر مراد جو ہے نا وہ صرف عمل ہے, نفس عمل یعنی جو انہوں نے ایکشن کیا. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے نیت جو ہے یہاں پر مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم جو ایمان والوں کے نیک اعمال کی بات کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو عمومی طور پر ناٹ آل دا ٹائم لیکن عمومی طور پر ہم نیکی اسی عمل کو کہتے ہیں کہ جس کی نیت بھی صحیح ہو, یعنی اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا. رائٹ, اللہ کی رضا, اللہ کو راضی کرنا خوش کرنا, وچ آلسو مینس آخرت کی جزا, یعنی آخرت میں مجھے اس کا انعام ملے گا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, دونوں ون اینڈ دی سیم تھنگ, یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کی نیت کبھی کسی نے کر لی اور کبھی کسی نے آخرت کی جزا کی نیت کر لی, اور کسی نے کبھی آخرت کی جزا کی نیت کری لیکن اللہ کی رضا کی نیت نہیں کری. نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بات کو کمپلیٹلی سمجھانے کی خاطر ان دونوں جملوں کو ساتھ جوڑ کر کے کہہ دیا جاتا ہے, اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا. ٹھیک ہے, صرف وہ ایک تھنکنگ پیٹرن کو سورٹ آف سمجھ لیں کہ لائن پر لانے کے لیے اس طرح سے بات کی جاتی ہے, ورنہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ایمان والوں کی جب نیکی کا تذکرہ کرتے ہیں نا, تو عموماً ہم اسی عمل کو نیکی کہتے ہیں کہ جس کے اندر صحیح نیت بھی تھی اور عمل کا طریقہ کار بھی سنت کے مطابق تھا. ٹھیک ہے, خلاف سنت, خلاف سنت کا مطلب یہاں پر خلاف دین نہیں تھا. ठीक है, मतलब खिलाफे, तो मतलब ये है कि अमल जो है वो खिलाफ दीन, खिलाफ शरीयत नहीं था। ठीक है, तो अमल की शक्ल भी सही थी और अमल के पीछे जो अंडरलाइंग नीयत थी वो भी सही थी। ठीक है, लेकिन जब काफिर के लिए नेक अमाल का जिक्र किया जाता है तो वहां पर नीयत का जिक्र नहीं किया जा रहा होता, इसलिए कि नीयत तो उनकी सही हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, लेकिन अमल की शक्ल वो अच्छी हो सकती है। ठीक है, जैसे आमतौर पर इनका क्या अमल क्या होता है कि ये करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और रिश्तेदारियां भी निभाते हैं और गरीबों को भी मदद कर देते हैं और बहुत सारे नहीं किए कि ये काम। जितना लोग काफिरों के साथ रहते हैं उतना उनकी अच्छाइयां उनके सामने खुलती हैं। ठीक है ना, हम जैसे आम तौर पर जो पाकिस्तान में रहते हैं या जो किसी ऑल मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, मिडिल ईस्ट के किसी मुस्लिम कंट्री में, ठीक है, तो उनका एक्सपोजर नहीं होता काफिरों से या बहुत कम होता है, तो हमें नहीं पता होता कि काफिर क्या क्या नेकी के काम कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे लोगों को नहीं पता होता, लेकिन जब आप काफिरों के साथ जाके रहना शुरू करते हैं ना, नॉन मुस्लिम के साथ, जैसे इंडिया में, इंडिया वाले जो हैं वो तो मेजोरिटी जो है वो आप नॉन मुस्लिम हैं, तो उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है हिंदुओं के साथ और सिखों के साथ और दूसरे जो बहुत सारे मजाहब वाले रहते हैं इंडिया के अंदर। उसी तरह यूरोप अमेरिका के अंदर जाकर के जो लोग रहना शुरू हो जाते हैं तो उनका भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है उन लोगों से, तो इन लोगों के सामने ना फिर उनकी बहुत सारी अच्छाइयाँ खुलती हैं। ठीक है, बहुत सारी अच्छाइयाँ इनको नज़र आती हैं उनके अंदर। दूसरी साइड पे मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में ज़रा अच्छाइयाँ ज़्यादा नज़र आती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक सोशल सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश हुआ हुआ है, एक गवर्नमेंट का सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ हुआ है, तो उस वजह से ज़रा ज़्यादा वहाँ पे अच्छाइयाँ नज़र आती हैं। इंडिया में इतनी ज़्यादा अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती, लेकिन जो बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं, दोस्तियां बन जाती हैं उनकी हिंदुओं के साथ, तो उनको उनकी भी बहुत सारी अच्छाइयाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इनके नेक अमल जो होते हैं वो उस नौयत के नेक अमल होते हैं जिनके अंदर नीयत तो सही नहीं होती लेकिन अमल जो होता है वो बड़ा अच्छा नज़र आ रहा होता है, तो इस अमल को अल्लाह ताला परेशान गुबार की तरह कर देंगे। ठीक है, कि यानी परेशान से मुराद यहाँ पर वही है कि उड़ती उड़ती हुई बिल्कुल ही डिस्पर्स्ड किस्म की, ठीक है, हाक डस्ट। ओके, अच्छा, किसी ने प्राइवेटली सवाल लिखा है कि खिलाफ शरीयत दीन और खिलाफ सुन्नत में क्या फर्क है, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर खिलाफ नहीं, एक्चुअली नहीं, ऐसे नहीं कहना चाहिए, बल्कि कॉन्टेक्स्ट के नहीं, के अंदर नहीं। ठीक है, यानी कॉन्टेक्स्ट को आप साइड पर रख देंगे। इनको जब भी ये लफ्ज बोला जाता है, खिलाफ सुन्नत, खिलाफ शरीयत, खिलाफ दीन, ये सब का एक ही मतलब होता है। ठीक है ना, खिलाफ दीन तो समझते हैं ना, ये भी नहीं समझते क्या कि खिलाफ दीन क्या चीज़ होती है, खिलाफ शरीयत क्या चीज़ होती है, ये भी नहीं समझते। ये तो इंशाल्लाह सबको ही, जो दीनदार लोग यहाँ पे यानी तफसीली क्लास सुनने के लिए आए हुए हैं, तो इतना तो पता है ना खिलाफ शरीयत क्या चीज़ होती है कि नहीं, इतना भी नहीं पता। मसलन किसी से डाका डाल करके, किसी अमीर के माल पर डाका डाल करके उससे माल छीना और किसी गरीब की मदद कर दी उसी माल से, तो ये जो गरीब की मदद करी है ये खिलाफ शरीयत तरीके से मदद करी है। ठीक है ना, तो इस गरीब की मदद करने का कोई फायदा नहीं है। सही है, तो ये नेक अमल हुआ, बज़ाहिर नेक अमल हुआ लेकिन खिलाफ शरीयत तरीके से नेक अमल किया गया। ठीक है, इससे ज़्यादा और क्या मिसाल। तो खिलाफ सुन्नत इसी चीज़ को कहते हैं जो कि खिलाफ शरीयत और खिलाफ दीन हो। ठीक है, अब हम जो सुन्नत का लफ्ज़ वैसे इस्तेमाल करते हैं ना अपने रोज़मर्रा के मामलात के अंदर, तो उसमें जो है ना वो बस इस हद तक हम उसको सोचते हैं कि जैसे हमने लिबास पहना है, तो अब लिबास पहना जो हमने पहना है तो अगर वो सतर पोशी कर रहा है, ठीक है ना, सतर को छुपा रहा है, सही है, तो वो लिबास जो है वो खिलाफ शरीयत नहीं कहलाता। हम आमतौर पर उसको खिलाफ शरीयत कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो सतर तो छुपा रहा है ना, राइट। लेकिन अगर वो लिबास जो है उसके अंदर तशाबुह बिल्कुफार है, यानी आप एक्टिवली सोच करके ना किसी काफिर कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं उस लिबास के अंदर, ठीक है, तो अगरचे कि वो लिबास आपके सतर को छुपा रहा है, लेकिन आपकी इस नीयत की वजह से कि आप उस नॉन मुस्लिम कल्चर को अच्छा समझते हुए उसकी कॉपी करते हुए लिबास पहन रहे हैं, तो ये लिबास जो है वो खिलाफ शरीयत नहीं कहलाता, लेकिन ये खिलाफ सुन्नत कहलाता है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो बस ये थोड़ी सी इसके अंदर यानी बारीक सा फर्क है कि खिलाफ सुन्नत उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो खिलाफ शरीयत, खिलाफ दीन इज इक्वल टू खिलाफ सुन्नत, और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो लिबास वाला कॉन्टेक्स्ट है जैसे, ठीक है, तो इसके अंदर ये थोड़ा सा यानी डिफरेंट है ये। ठीक है, तो बस ये मिसालें अगर जहन में रखें, एक तो वो डाके वाली मिसाल, ठीक है, और ये वाली मिसाल लिबास वाली, तो इससे फिर ये दोनों के दरमियान डिफरेंस आपको इंशाल्लाह याद रहेगा, समझ आ जाएगा। तो अब अगली आयत में फरमाते हैं, अस्हाबुल जन्नति यौमइज़िन खैरु मुस्तकर्रु व अहसनु मकीला। ठीक है, तो इसके खुलासे तफसीर में लिखते हैं, इसका मतलब कि अहले जन्नत उस रोज क़यामगाह में भी अच्छे रहेंगे और आरामगाह में भी खूब अच्छे होंगे। ठीक है, मुराद मुस्तकर, यानी मुस्तकर से मुराद क़यामगाह, जिसके अंदर बंदा जो है वो लंबा अरसा क़याम करता है। ठीक है, तो उसको मुस्तकर भी कहते हैं, जैसे कि कुरान का लफ्ज भी मुस्तकर ही इस्तेमाल हुआ। और मकील से मुराद यहाँ पर इन्होंने जैसे लिखा कि मुस्तकर और मकील से जन्नत है यहाँ पर। ठीक है, यानी जन्नत उनके लिए जाए कयाम और जाए आराम होगी, और अच्छा होना उसका जाहिर है, अहसन होना, अहसन का मतलब सबसे हसीन, सब दूसरों के मुकाबले में ज्यादा हसीन, अहसन इसम तफ़ील का सीगा। ठीक है, तो देखें अब यही फर्क है उलमा की अंडरस्टैंडिंग के दरमियान। ठीक है, कि हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह इसको क्या कह रहे हैं कि जी दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना, कि जन्नत ही जो है वो ही कयाम की जगह भी है, और जन्नत ही जो है वो आराम की जगह भी है। ठीक है, लेकिन आगे जब हम आरिफ मसाइल में पढ़ेंगे तो वहां पर हजरत है दो अलग अलग तरीकों से इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये इल्मी इख्तिलाफात कहलाते हैं, ठीक है, जो कि उलमा में होते हैं। हत्ता के ऐसा नहीं कि जी हनफी आलम का मुख्तलिफ ओपिनियन है तो शाफी आलम का मुख्तलिफ ओपिनियन है, तो भाई ठीक है, ये तो बिल्कुल अलग अलग मसलक है, राइट, अलग मजहब मसलक है ये। ठीक है, और अलग फिकह हैं, शाफी फिक अलग है, मालिकी फिक अलग है, तो डिफरेंस होना तो समझ में आता है। नहीं, ये डिफरेंस उस वक्त भी होता है जब एक आलिम शेख हो और दूसरा आलिम उसका मुरीद हो, एक आलिम उस्ताद हो और दूसरा आलिम उसका शागिर्द हो, इवन देन इल्मी इख्तलाफात होते हैं। उसकी बेहतरीन मिसाल यही है कि हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ये शेख थे, ये पीर थे, और इनके मुरीद कौन थे, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक डिफरेंट तरीके से इस बात को एक्सप्लेन किया, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो उन्हीं के शेख हैं, उन्हीं के उस्ताद हैं, उन्होंने डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन देखें, इस इख्तलाफ को जो है वो लड़ाई झगड़े का सबब, नफरत का सबब नहीं बनाया, वही मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर ही, राइट, अपनी किताब के अंदर ही डिफरेंट ओपिनियन भी नकल कर रहे हैं, राइट, अपने शेख को ओपिनियन भी नकल कर रहे हैं और अपना ओपिनियन भी नकल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ने इखलास के साथ मेहनत करके एक नतीजा अखज किया है, राइट, एक इज्तिहाद किया है, एक नतीजा अखज किया है, और दोनों का नतीजा अपनी अपनी जगह पर वैलिड है। ठीक है, एक का सही होना दूसरे का गलत होना ये इल्मी इख्तलाफ में नहीं होता, ये सही है तो फिर वो दूसरा गलत होगा, उसके ऊपर गोया के अजाब मिलेगा, सजा मिलेगी गलत ओपिनियन के ऊपर, और ठीक ओपिनियन वाले को जो है वो सवाब मिलेगा, राइट, ऐसा नहीं होता इल्मी इख्तलाफ में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इन्होंने इस आयत का इस तरीके से तर्जुमा किया और ब्रैकेट्स के अंदर इसकी तफसीर इस तरीके से लिखी कि जन्नत ही है मुराद इन दोनों से। अच्छा, अगली आयत में फरमाते हैं, वयौम तशक्ककु अस्समाउ बिल गमामी व नुज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, और जिस रोज आसमान एक बदली पर से फट जाएगा। बदली का मतलब हमारे यहाँ जो है जब बादल आ जाते हैं आसमान के ऊपर, तो जो मौसम यानी धूप खत्म हो जाती है और साया सा आ जाता है ना, उसको हम बदली कहते हैं। लेकिन हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था बादलों के लिए, वो बदली ही का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो आसमान एक बदली पर से फट जाएगा, गोया कि एक बादल सा जो है वो नमूदार होगा और वो आसमान को ना किसी तरीके से स्प्लिट कर देगा। ठीक है, ये ऐसे इसकी मिसाल समझाते हैं कि जैसे आप कोई टेंट लगाएं। ठीक है, अगर आप लोगों ने हज किया होगा तो हज में जो मिना में टेंट्स होते हैं, तो कभी टेंट्स को गौर से देखें, मीना के टेंट्स और अरफात और बल्कि अब तो हर जगह ही टेंट्स लग गए हैं। तो वो टेंट्स कैसे होते हैं कि वो ना उनकी जो छत होती है ना व्हाइट कलर का जो एक फैब्रिक होता है, ये फैब्रिक जो होता है इंतहाई तना हुआ फैब्रिक होता है, स्ट्रेच्ड होता है वो, ठीक है। तो अब अगर फॉर इंस्टेंस कोई साहब जो है वो एक चाकू या खंजर लेकर के जो है ना वो किसी स्टूल स्टूल को लगा करके ऊपर चढ़ जाए और उस खंजर के जरिए से वो उस टेंट के जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है व्हाइट कलर वाला, उस कपड़े को बीच में से काट दें, ठीक है ना, उस यानी चीर दें उस कपड़े को बीच में से, तो क्या होगा कि वो कपड़ा चूंकि चारों तरफ से तना हुआ है ना, तो बीच में जो आपने इसको खंजर से काटा है, तो अब ये सिर्फ वो एक वो नहीं रहेगा, ये कट नहीं रहेगा, बल्कि चूंकि हर तरफ से उसको खींचा जा रहा है तो ये कट जो है ना ये चिर जाएगा, यानी पूरा का पूरा जो टेंट है ना वो चिर जाएगा, ठीक है, खुल जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो रोजे महशर में जब सारे के सारे इंसान जो है वो एक जमीन के ऊपर जमा कर दिए जाएंगे, ठीक है। वो जमीन कैसी होगी? वो जमीन इस तरह की गोल या इलेप्टिकल जमीन नहीं होगी जैसे कि अभी अभी की अर्थ है, बल्कि वो एक ना बिल्कुल प्लेन ग्राउंड होगा, प्लेन चटियल मैदान, ठीक है। और उस मैदान के अंदर कोई कोई दरख्त, कोई पहाड़, कोई पत्थर, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसके ऊपर कोई, जिसके पीछे जाके कोई छुप सके, ठीक है। तो इस तरह का ना एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस होगी, ठीक है। और वो फ्लैट सरफेस भी जो है वो यानी इसी जमीन का एक टुकड़ा होगा, जो हमें हदीसों से बात समझ में आती है वो ये है कि इसी जमीन, जिस जमीन पे हम रहते हैं ना, इसी जमीन का एक टुकड़ा होगा जिसको के वो मैदाने हशर बना दिया जाएगा। गालिबन वो अरफात का मैदान होगा। उस अरफात के मैदान को जो है अभी तो बहुत छोटा सा है वो, उसके अंदर सारी इंसानियत तो नहीं समा सकती, ना सारे जो है वो जानवर मिलकर के, कोई यानी इंसानियत ही नहीं समा सकती तो जानवर कहाँ से समाएंगे। तो उसको जो है ना वो फरिश्तों के जरिए से उसको भी खींचा जाएगा चारों तरफ से, ठीक है ना, जिस तरह से किसी रबड़ की कोई सरफेस हो ना तो उसको खींचते हैं तो वो फैल जाता है। तो इसी तरीके से ये जो अरफात का मैदान होगा ये फैल जाएगा और इतना बड़ा हो जाएगा कि उसके ऊपर सब समा सके, खड़े हो सके, लेकिन इतना जो उसको फैलाया जाएगा कि सब उसके ऊपर खड़े हो सके, इतना ही फैलाएंगे कि जितना के हर एक के लिए एक खड़े होने की जगह हो सके, हिलने की जगह उसमें नहीं होगी, यानी इतना नहीं फैलाएंगे कि आप जरा आराम से लेट सके वहां पर, लेटने की जगह नहीं होगी बंदे के लिए, ठीक है, बस खड़े होने की जगह होगी और बस इतनी ही होगी जिसमें वो खुद समा सके, अगला बंदा नहीं आ सके उसके ऊपर, ठीक है ना, यानी अगला बंदा नहीं आ सके इस मुराद के, बस आप खड़े हुए, आपके बिल्कुल बराबर में दूसरा बंदा, उसके बिल्कुल बराबर में तीसरा उसके, ठीक है। तो इंतहाई जो है वो पैक्ड किस्म की वो ग्राउंड होगा, ठीक है, उसके ऊपर सारे के सारे खड़े भी होंगे। और ऊपर की तरफ क्या होगा? ऊपर जो है ना एक यानी एक आसमान जो जो होगा ना ऊपर, वो आसमान इस जमीन में जो हम जिसको हम आसमान कहते हैं वैसा आसमान नहीं होगा, इसलिए कि इस जमीन में हम जिस चीज को आसमान कहते हैं वो एक्चुअली कोई फिजिकल चीज नहीं है, राइट, कोई यानी कोई सॉलिड चीज नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर जो आसमान है वो तो एक यानी जिसको कहते हैं एटमोस्फेयर की लेयर्स है ना, राइट, जो हवा है वो थोड़ा सा लेस डेंस होती है, फिर ऊपर जाती है वो थोड़ी और डेंस हो जाती है ना, यानी इस तरीके से ये जो लेयर्स हैं एटमोस्फेयरिक लेयर्स, वो ट्रोपोस्फेयर वगैरह जो है वो सब ऊपर यानी ओपन है, वो बस थोड़ा थोड़ा सा जो है वो उसकी डेंसिटीज के अंदर फर्क आ जाता है, कॉन्टेंट्स के अंदर फर्क आ जाता है, लेकिन वो एक ओपन जगह है। लेकिन कयामत के दिन जो मैदान हशर के ऊपर जो आसमान होगा, अपेरेंटली ऐसा लगता है हदीसों से और इन आयतों से कि वो एक फिजिकल चीज होगी, ठीक है, यानी बाकायदा एक जैसे कि एक दीवार, एक एक छत की शक्ल की चीज होगी, ठीक है, जैसा कि वाकया मेराज के अंदर हमें नजर आता है कि नबी अलैहिस्सलाम जब पहले आसमान पर पहुंचे तो बाकायदा एक एक बंद जगह थी वो, और इसमें एक दरवाजा था, उस दरवाजे को खटखटाया गया था, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खटखटाया था, अंदर से फरिश्ते ने पूछा था कि कौन है, राइट, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तब उस फरिश्ते ने दरवाजा खोला, तब नबी अलैहिस्सलाम उस आसमान में एंटर हुए, राइट, यानी एक फिजिकल जगह थी बाकायदा जो कि क्लोज थी वो, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि कयामत के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से एक फिजिकल छत होगी, वो फिजिकल छत जो है वो फटेगी, ठीक है ना, और फट करके उसके अंदर से गमाम यानी बादल जो है ना वो नीचे की तरफ आएगा और उसके चारों तरफ जो है वो भी फरिश्ते भी होंगे, यानी एक्चुअली फरिश्ते भी उतर रहे होंगे और जो है वो उसी के अंदर किसी तरीके से एक यानी अल्लाह ताला का अर्श भी होगा। अब ये जो मंजर होगा कि ऊपर से जो है वो फरिश्ते उतर रहे हैं, एक बादल है, बादल के अंदर अल्लाह ताला का अर्श है, ये जो ऊपर से ऊपर जो मामला हो रहा होगा ना, तो ये ऐसा होगा कि नीचे जितने लोग खड़े हुए हैं मैदाने हशर में, वो सब के सब ऊपर देखना शुरू कर देंगे, राइट? और ऐसा टिकटिकी बांध करके देखेंगे कि किसी चीज का होश ही नहीं रहेगा फॉर द टाइम बीइंग, राइट? उस वक्त किसी चीज का होश ही नहीं रहेगा कि बराबर में कौन खड़ा हुआ है, क्या खड़ा हुआ है, किस हालत में खड़ा हुआ है, राइट? जब ये चीज हम सोचते हैं ना, तो वो बात समझ में आती है जिसमें कि या हदीस मुबारक समझ में आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग मैदान हशर में जो खड़े किए जाएंगे ना, तो बेलिबास होंगे और यानन कोई लिबास नहीं होगा किसी के ऊपर। तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये बात सुनी तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, फिर लोग एक दूसरे को देखेंगे नहीं, कैसी अजीब सी मामला होगा, बेलिबास एक साथ खड़े हुए, औरतें भी, मर्द भी, बच्चे भी, सब भी, राइट? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त हर एक को ऐसी फिक्र पड़ी हुई होगी कि वो किसी दूसरे को नहीं देख रहा होगा, चाहे किस हालत में भी खड़ा हुआ, राइट? तो जब ऊपर सारे के सारे देख रहे होंगे, तो बात समझ में भी आती है कि ऐसी फिक्र पड़ी होगी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या ऊपर से नाजिल हो रहा है, कभी किसी ने फरिश्तों को उससे पहले नहीं देखा होगा इस हालत में कम अज कम, राइट? कब्र में तो फरिश्तों को देख कर आए होंगे, लेकिन ऐसे जो है वो उतरते हुए और अल्लाह का अर्श, ये तो पहले कभी भी नहीं देखा होगा। तो उस वक्त जो है ना, गर्दनें पूरी की पूरी ऊपर ही होंगी, बिल्कुल बराबर में, और नीचे की तरफ जो है वो उस वक्त गर्दन ही होगी, लेकिन ये हालात जो है वो चेंज होंगे। ऐसे नहीं है कि बस हर वक्त ही सारे के ऐसे खड़े रहेंगे, पूरा का पूरा कयामत के दिन ऐसे ही गुजर जाएगा, नहीं, बल्कि फिर लिबास भी पहनाने शुरू किए जाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले लिबास पहनाया जाएगा, राइट? मूसा अलैहिस्सलाम, फिर वो उनको उठाया जाएगा, ये बहुत सारी तफसीलात आती हैं फिर। तो बहरहाल यौम तशक्कक़ुस समाउ बिल ग़मामी व नुज़िला अल मलाइकतु तंज़ीला। अच्छा, अल मुल्क, एक मिनट, किसी ने कुछ लिखा है कि इल्मी इख्तलाफ तो ठीक, लेकिन फिरकों में क्यों हो गए हम, जबकि कुरान में तो फिरकों में बांट लेना खुद को मना है। अच्छा, कुरान में जो फिरकों में बांट लेना अपने आप को मना किया गया है ना, तो वो इल्मी इख्तलाफ को मना नहीं किया गया है, ठीक है? तो इल्मी इख्तलाफ की वजह से जो 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 तफरीक होती है, वो असल में फिरक जो है वो होते नहीं है, ठीक है ना? वो असल में फिरते नहीं बनते हैं। फिरते का जो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यानी एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? फिरते जो बनते हैं ना, वो असल में अकीदे के इख्तलाफ पर बनते हैं, बुनियादी यानी बहुत ही मेजर किस्म के जो अकीदे के इख्तलाफात होते हैं ना, उनकी बुनियाद पर फिरते बनते हैं, ठीक है? तो ये एक अलग चीज है, और वो जो इल्मी इख्तलाफ जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे ना, वो अलग चीज है, ठीक है? तो ये एक आम जो है वो, चूंकि हम हमारा ज्यादा दीनी उलूम से वास्ता नहीं होता ना, हम तो दुनियावी उलूम पढ़ करके हमने अपनी जिंदगी बनाई भी होती है, ठीक है? तो इस वजह से ना, हम हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, ये जो चार मसलक हैं, इनको हम फिरके समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है? लेकिन ये फिरके होते नहीं है, ठीक है? ये असल में फिरके नहीं है, सही है? तो आप जिस फिरके की बात कर रही ना, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, और उसका भी मामला ये है कि जब अकीदे का इख्तलाफ हो जाता है ना, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते, ये जायज ही नहीं है कि आप किसी ऐसे फिरके वाले को जो कि यानी किसी बुनियादी अकीदे में वो मुख्तलिफ हो चुका हो, ठीक है, वो यानी बुनियादी अकीदे का इनकार कर चुका हो, तो अब उसको जो है ना वो आप गले लगा लें और कहें कि हाँ जी, आप भी मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान हैं और सब जो है वो भाई भाई हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? ये फिरते का जो इख्तलाफ, जब अकीदे का इख्तलाफ बन जाता है ना, तो अब इस अकीदे के इख्तलाफ को जो है ना वो आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये इट्स नॉट 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 पॉसिबल, इट्स नॉट इवन अलाउड टू इग्नोर इट, ठीक है? तो बात ये है कि जो कुरान की आयात में हमने चंद अल्फाज पढ़े होते हैं, तो उनको हम जब तर्जुमा कर रहे होते हैं ना खाली, तो उसके अंदर हमें डिटेल्स नहीं पता होती है ना, तफसीर नहीं पता होती है उसकी, हदीसों की हमें पूरी नॉलेज नहीं होती है कि जी नबी अलैहिस्सलाम ने हदीसों के अंदर हमें क्या क्या चीजें बताई हैं, कि क्या चीज जायज है, किस चीज को आप इग्नोर कर सकते हैं, किस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बस हम कुरान की एक आयत के वअतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, बस ये एक आयत हमने सुन ली और उसके अंदर हमने तर्जुमा ये पढ़ लिया कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, ठीक है, और आपस में तफरके में ना पड़ो। अब जो है वो रस्सी का भी हमने खुद ही एक तस्वर बना लिया कि रस्सी से मुराद क्या है, ठीक है, और वो हमें पता नहीं होता कि असल में रस्सी का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है। वो तो अल्लाह ताला की रस्सी कोई ऊपर से लटकी हुई तो नहीं है, जाहिर सी बात है, ठीक है, कोई इस बात को तो नहीं कह सकता हाँ वो मक्का मुकरमा में ऊपर से एक रस्सी लटकी हुई है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जाकर के उस रस्सी को पकड़ लो, ठीक है ना, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर रस्सी, जब रस्सी रस्सी नहीं है तो फिर वो क्या है, ठीक है ना। तो इसके लिए तो बहुत सारी तफसील समझनी पड़ेगी, और उसके बाद जब रस्सी को समझने के लिए इतनी तफसील आपको जाननी पड़ेगी कि ये है कि असल में, तो वला तफर्रकू जो है ना इसको भी समझने के लिए अच्छी खासी तफसील जाननी पड़ेगी। ऐसे तर्जुमे से बात समझ में नहीं आती है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि किसी जगह तर्जुमे में ये भी पढ़ा था कि क़यामत के दिन आसमान फटेगा तो वो ऐसा मालूम होगा जैसे कोई तेल की तिलछट होती है, ये कैसे, ये कैसी कैफियत होगी। तेल की तिलछट जो है ना उसकी कॉन्सेप्ट इस तरह से बनता है कि जैसे आप माशाल्लाह आजकल पकोड़े पकोड़े खूब लोग तल रहे होंगे अपने घरों के अंदर, जिनकी कम से कम फैमिली के साथ आजकल रह रहे हैं, तो खैर जो पकोड़े तलते हैं तो उसमें तेल की जो तिलछट होती है वो जो साइड्स के अंदर जो एक बन जाता है ना उसको तिलछट कहते हैं। एक्चुअली मैं खुद जो है वो तिलछट के लफ्ज़ से बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट वही है कि जैसे जैसे अभी समझाया था ना कि जो वो टेंट है उसको अगर बीच में से चीर दिया जाए तो वो फिर जैसे कि रोल अप होकर के साइड्स में बन जाएगा ना, ठीक है, यानी साइड्स में पहुंच जाएगा, जो जो उसके बॉर्डर्स हैं, जो उसकी एजेस हैं, ठीक है, वो रोल हो करके वो एजेस तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो तेल की तिलछट भी जो है ना वो जो एजेस के ऊपर तेल जमा हो जाता है ना, बॉर्डर्स के ऊपर, एजेस के ऊपर, तो उसी को यानी तिलछट का लफ्ज उसी के लिए गालबन इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी वही कैफियत है जो कि आपको टेंट की मिसाल के जरिए से समझाई गई ना, उसी तरीके से वो तेल की तिलछट भी, जो लोग तेल वेल का काम ज्यादा करते हैं उन्होंने तेल की मिसाल दे दी, ठीक है, हम अल्हम्दुलिल्लाह तेल का काम ज्यादा नहीं करते। तो हजरत सारी इंसानियत के सामने अकेले अकेले हिसाब देना होगा। हाँ, हिसाब का जो अलग अलग वाला हिसाब वाला मामला है तो वो तो अलग अलग ही होगा, ठीक है, और फिर जो है वो अल्लाह ताला एक ग्रुप ऑफ पीपल से भी खिताब किया जाएगा, ठीक है, जैसे कि सारे जो काफिर होंगे उनके साथ एक इज्तिमाई खिताब भी होगा, ठीक है, जो बिल्कुल शुरू में होगा इज्तिमाई खिताब, वो क्या होगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिम, कि जितने भी मुजरिम हो ना तुम लोग, यानी काफिर मुनकर, तुम सारे के साथ जो सारे जो है वो अलग हो जाओ, मुमताज हो जाओ, सूरह यासीन के अंदर जैसे ये, तो ये जो है वो एक यानी एक इज्तिमाई खिताब है, और वो भी बेस्ड ऑन ईमान है कि भाई जो ईमान वाले नहीं है वो अलग हो जाएं, लेकिन फिर इंडिविजुअली हिसाब किताब जो है वो जिनका लेना मकसूद होगा तो उनके साथ फिर अलग अलग मामला भी होगा। जो मेजर फिरते बन गए हैं उनमें से कुछ ने निशानदही कुछ की निशानदेही फरमा दीजिए। अच्छा, इस वक्त जो मेजर फिरते हमें नजर आते हैं ना उम्मत मुस्लिमा में, वो सबसे बड़े जो हैं वो तो दो ही हैं इस वक्त, ठीक है, जो नजर आते हैं वो अहले सुन्ना वल जमात वाले और जो अहले शिया कहलाते हैं, ठीक है, अहले तशी कहलाते हैं वगैरह, तो ये बहुत मेजर यानी अकीदे के इख्तलाफात की बुनियाद पर है, ठीक है। वैसे बहुत सारे फिरके जैसे 72 फिरकों का हदीस मुबारका के अंदर जिक्र है, तो वो उनके वो अब ज़्यादा वो यानी उनके रिकग्नाइजेबल नज़र नहीं आते हैं, लेकिन माजी के अंदर वो बहुत ही प्रोमिनेंट रहे हैं, जैसे कि वो मुर्जिया और मोतज़िला और कदरिया और इस तरह के बहुत सारे फिरके बने हैं पहले, लेकिन उनमें भी मेजर अकीदे का इख्तलाफ था। कादियानियत को एक फिरका कह सकते हैं, नहीं, कादियानियत जो है वो फिरका नहीं है, ठीक है, यानी वो इस तरीके का अकीदे का फिरका नहीं कहलाएगा, वो यानी कादियानी को जो है ना वो फिरके से भी ज्यादा, ठीक है, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि इनकारी ठीक है, यानी वो कोई शिया के जैसा फिरका भी नहीं कह रहा था कादियानी, ठीक है, वो बहुत ही यानी बिल्कुल स्ट्रेट काफिर वाला मामला है कादियानियों का, ठीक है। कादियानियों के लिए जो प्रॉपर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो जिंदीक और मुलहिद का लफ्ज है, फिरके का लफ्ज नहीं है। अच्छा, अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल मुल्कु यौम इज़्ज़िनिल हक्कु लिर रहमान व काना यौमन अलल काफिरीना असीरा, के उस रोज हकीकी हुकूमत हजरत रहमान ही की होगी, यानी हिसाब व किताब व जजा व सजा में किसी को दखल ना होगा, जैसा दुनिया में जाहिरी तसर्रुफ थोड़ा बहुत दूसरों के लिए भी हासिल है। यानी दुनिया में ना अल्लाह ताला ने एक टेम्प्ररी किस्म की छोटी छोटी सी हुकूमत लोगों को दी हुई है, ठीक है, कि भाई यहाँ भी आप जो है वो आपको यानी एक हर इंसान को कम से कम कितनी हुकूमत हासिल है, अपने जिस्म के ऊपर हुकूमत हासिल है, राइट, जो 5-6 फिट का 4 फिट का जितना भी जिस्म होता है तो उसके ऊपर हुकूमत जो है वो हर इंसान को हासिल है, ठीक है ना, अपनी अकल के ऊपर हुकूमत हासिल है कम से कम, ठीक है भाई, चले जिस्म पर भी हुकूमत हासिल नहीं है, जिस्म को भी जो है वो किसी ने गुलाम बना लिया, किसी ने जो है वो आपको कैद में रख लिया, ठीक है, तो जिस्म पर भी चलो हुकूमत नहीं है लेकिन अकल पर तो हुकूमत है ना, राइट, सोच के ऊपर हुकूमत होती है इंसान की, ठीक है, और फिर उससे थोड़ा और बढ़ जाए तो जो माँ होती है उसको अपने बच्चों के ऊपर जब तक वो छोटे होते हैं कम से कम उस वक्त तक हुकूमत होती है, जो बाप होता है उसको अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो है वो बीवी के ऊपर और बच्चों के ऊपर हुकूमत हासिल होती है, इसी तरीके से इस तरह की छोटी छोटी हुकूमतें जो है दुनिया में अल्लाह ताला ने दी हुई हैं, और ये आजमाइश की खातिर दी हैं कि भाई तुम्हें जो ये इख्तियार दिया गया है तो इस इख्तियार को तुमने कैसे इस्तेमाल किया, लेकिन क़यामत के दिन जो है ना ये इख्तियार हर एक से वापस ले लिया जाएगा और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास इख्तियार होगा। अच्छा, वकान यौमन, तो और वो दिन काफिरों पर बड़ा सख्त दिन होगा क्योंकि उनके हिसाब का अंजाम जहन्नम ही है, ठीक है, कल जो है वो एयरपोर्ट के लाउंज के मिसाल देकर के आपको बात समझाई थी कि दिन तो वही होगा, सारे लोग वहीं पर मौजूद होंगे उसी मैदान हशर के अंदर, लेकिन कुछ लोग जो है वो यानी बाहर पड़े हुए होंगे, एम्प्लॉय वो क्या कहते हैं इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स की तरह, राइट, और कुछ लोग जो होंगे वो बिजनेस क्लास के पैसेंजर्स की तरह होंगे, कुछ लोग फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स की तरह होंगे, और ये लोग फिर अपने अपने लाउंजेस के अंदर होंगे, तो उस दिन की जो सख्ती होगी ना वो यानी वैसे तो बहुत सारी तफसील आती है हदीस के अंदर ना, कि भाई सख्ती जो है एक यानी एक एक अंदाज से लगता है कि जो वो हर एक के लिए सख्त होगा वो दिन, ठीक है, लेकिन जो एक एक बहुत ही यानी जाहिरी तौर पर और हर वक्त की जो सख्ती वाला मामला है वो काफिरों के साथ होगा। अच्छा, मोमिनों के लिए सख्ती कैसी, ठीक है, कि भाई वो परेशान तो होंगे ना मोमिन भी उस दिन, तो वो कैसे, भाई वो बिजनेस लाउंज में होंगे, वो वीआईपी लाउंज में होंगे, लेकिन वीआईपी लाउंज में भी अगर आपको 5,000 साल तक के लिए रख दिया जाए तो क्या ख्याल है, वीआईपी लाउंज से फिर वो कोफ नहीं होने लगेगी, ये नहीं होगा कि भाई आगे मामला चले, राइट, आगे तो बढ़े, अब ये लाउंज के लिए तो हम नहीं आए थे ना यहाँ पर, राइट, बेशक बड़े मजे कर लिए, बड़ी अय्याशियां कर ली थी लाउंज के अंदर, लेकिन हम लाउंज के लिए तो इधर नहीं आए थे, हम तो मंजिल के लिए आए थे, तो मंजिल में कब जाएंगे, राइट, तो वही फिर वक्त होगा कि जब ईमान वाले भी जो है ना वो परेशान हो जाएंगे कि ये कब हिसाब किताब शुरू होगा, राइट, कब जो है मामला आगे बढ़ेगा, ये तो चेंज ही नहीं होकर के दे रहा, चेंज चेंज एक ऐसी चीज है जो कि इंसानों की मजबूरी है, वी वॉन्ट चेंज, ठीक है, तो बड़े अय्याशियां करवा दें लेकिन फिर भी वॉट इज नेक्स्ट, है ना, ये चेंज जो है ना फिर वो आकर के इवेंचुअली अल्टीमेटली जो है ना वो चेंज फिर आकर के हमारा मसला बन जाता है, ठीक है, तो उसी तरीके से फिर वहां पे भी लाउंजेस के अंदर भी जो है वो चेंज एक मसला बन जाएगा कि चेंज क्यों नहीं हो रहा है मामला, तो फिर वो जाएंगे फिर सारे के सारे फिर ईमान वाले ही जाएंगे ना आदम अलैहिस्सलाम के पास, राइट, फिर आदम अलैहिस्सलाम से जो है वो वहां से पता लगेगा नहीं जी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, फिर नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास, फिर ईसा अलैहिस्सलाम के पास, ठीक है, फिर नबी अलैहिस्सलाम के पास, ठीक है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो अल्लाह ताला इजाजत देंगे, वो मकाम महमूद अता फरमाएंगे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दुआ मांगना शुरू करेंगे, तस्बीह शुरू करेंगे, ठीक है, फिर जो है ना वो सिलसिला आगे बढ़ना शुरू होगा, द बॉल विल स्टार्ट रोलिंग। ठीक है। बरेलवी और उमान के इबादिया क्या फिरके हैं? बरेलवी जो है उनको फिरका नहीं कहा जाता, उनको अहले सुन्ना और जमात ही का हिस्सा समझा जाता है, ठीक है। और उनके और बाकी जो जो लोग हैं उनके अकायद के दरमियान इतने मेजर फर्क नहीं, ठीक है। देखें, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हाँ और ना, या तो है या तो नहीं है, ठीक है। ये चीज भी अप्लाई होती है बहुत सारे मामलात के अंदर, ठीक है ना। जिस तरह कंप्यूटर साइंस वाले जानते हैं, वन और जीरो, या तो वन है या जीरो है, या करंट है या करंट नहीं है, ठीक है ना। दरमियान की कोई चीज नहीं होती, है ना। लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे भी हैं कि जिनके अंदर दरमियान में भी बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। वो अलग मामलात हैं जिनके अंदर दरमियान में भी बहुत कुछ होता है, और वो अलग मामलात हैं जिनमें दरमियान में कुछ नहीं होता, इधर वन और जीरो, बस हाँ या ना, ठीक है। तो इसी तरीके इसी ये जो शिर्क वाला मामला है ना, कुफ्र शिर्क इल्हाद जिंदीक, ये जो है ना, ये जीरो है, जीरो वाला मामला, ठीक है। और ईमान ये वन है, ठीक है। इनके दरमियान कोई ग्रे एरियाज नहीं है, ठीक है। इनके दरमियान कोई वो स्पेक्ट्रम नहीं है दोनों के दरमियान, बस कुफर या ईमान, बस बीच की कोई चीज नहीं। लेकिन जो अकायद का डिफरेंस है, अब इसमें बहुत लंबे स्पेक्ट्रम है। हाउ मच डिफरेंट इज इंपॉर्टेंट, कितना ज्यादा है और कितना कम है, राइट। तो इसकी बुनियाद पर फिर वो यानी बहुत तफसील होती है इसके अंदर। तो इस वजह से ना, ये तफसील के जहां पे मामला आता है, तो फिर वहां पर जाहिर है फिर एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, एक्सपर्ट्स से जो है वो बात को समझना पड़ता है। एक्सपर्ट ने बड़ी बड़ी इसके ऊपर तफसीलात लिखी है, ठीक है। तो बरेलवियों का मामला और जो है वो यानी शियाओं के अंदर भी फिर बड़ी तफसील है कि भाई कौन कौन से अकायद जो है वो कुफर को कंप्राइज करते हैं, कौन से जो अकायद वाले शिया हैं वो कुफर को नहीं बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके अंदर सारी इतनी तफसीर आ जाती है। फिर उसी तरह से ओमान के जो आप पूछ रहे हैं बादिया, तो उसमें भी मैंने जहां तक सुना है, मुझे कोई बहुत ज्यादा इसकी कोई रिसर्च नहीं है इसके अंदर, लेकिन उनमें भी ऐसे हैं कि जो कि बहुत ऑफ हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि इतने ऑफ नहीं है। बाकायदा हमने तो नमाज पढ़ी है उनके कुछ लोगों के पीछे, क्योंकि मुफ्ती मुफ्ती हजरात का फतवा था कि आप इनके इन वालों के पीछे आप नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक दफा ही जाना हुआ था वहां पे। अच्छा, तो ये ऑफ वन एंड जीरो वाला जो सिलसिला ना, ये जैसे अभी तो रिमाइंड कराने के साथ है कि या तो इंसान नमाजी होता है या वो नमाजी नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि जी वो चार नमाजें पढ़ रहा है और एक नहीं पढ़ रहा तो नमाजी कहलाएगा, नहीं। उसी तरह पर्दा होता है या नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि जी कजन से पर्दा कर रही हूँ, बहनोई से नहीं कर रही, तो पर्दा तो कर रही हो ना कम अज कम, या पड़ोसी से कर रही हूँ और घर के जो जो गैर मेरा रिश्तेदार है उनसे नहीं कर रही हूँ, तो पड़ोसी से तो पर्दा कर रही हूँ ना, नहीं। पर्दा इधर होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से बाकी चीजों के अंदर भी तफसीलात होती हैं, यानी बाकी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें तफसीलात होती हैं। हम अहले सुन्नत में जो अलग जमातें बनी वो क्यों हो गई, सिर्फ इल्मी इख्तलाफ के साथ भी एक क्यों नहीं है हम? आपको जरा थोड़ा जुड़ने की जरूरत है, ठीक है। तो थोड़ा क्लासेस वगैरह लेना शुरू करें, बिकॉज ये एक बहुत लंबी यानी फिर तफसील है इसके अंदर, जो कि ऐसे इतना आसानी से समझा देना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो इल्मी सिलसिले में एक जुड़ेंगी तो इंशाल्लाह फिर आपको ऐसा ऐसा ही बातें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी कि क्यों, कैसा कैसे हुआ है सब कुछ ना। शिया यही कहते हैं कि आप सब कई ग्रुप में हो गए। तो शियाओं के अपने ग्रुप कितने हैं, वो किस बेसिस पर ये कहते हैं, हैं? क्या खुश हो रहे हैं कि हमें कह रहे हैं कि हम ग्रुप्स में हो गए, उनके भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आपको नहीं पता, ठीक है। बहुत सारे, बल्कि शायद सुन्नियों से भी ज्यादा ग्रुप जो होते हैं ना, वो शियाओं के अंदर है, ठीक है। तो ये ना बहुत बहुत जैसे दूर रह करके जब हम व्यू करते हैं ना इस दीन को, तो दूर से हमें जो है ना वो फिर इसी तरह की बातें होती हैं। तो इसके लिए ना दीन में अल्लाह ताला के कुरान में हुक्म जो बहुत क्लियर क्लियर हुक्म है, ठीक है, जिनके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, राइट। कुरान के बहुत सारे हुक्म ऐसे हैं कि जिनमें इल्मी इख्तलाफ है कि भाई ऐसे करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन हर हुक्म में इल्मी इख्तलाफ नहीं है। तो जो वो हुक्म है ना, या अय्युहल लजीना आमनु तक्कुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, इसमें कोई इल्मी इख्तलाफ नहीं है, राइट। अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहे हैं तक्वा इख्तियार करो और सादिकीन के साथ नत्थी हो जाओ, जुड़ जाओ, राइट, अपने आप को उनके साथ बांध लो उनको। और इस तरह के बहुत सारे हुक्म है जिनमें फिर बिल्कुल क्लियर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तो उन हुक्म पे अमल अमल कर हम अगर अमल कर लेना, तो फिर बाकी सारी जो कंफ्यूजन्स होती है ना, वो सारी रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, यानी जो क्लियर हुक्म है उन पर हम अमल करना शुरू कर देना, तो जो अनक्लियर बातें हैं ना वो भी इवेंचुअली क्लियर हो जाती हैं। लेकिन दूर बैठ करके वो जो होते हैं, दूर के ढोल सुहाने, तो दूर के ढोल जो होते हैं वो सारे सुहाने नहीं होते, लेकिन बहुत सारे दूर के ढोल ऐसे भी होते हैं जो कि कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, क्योंकि हम बहुत दूर से देख रहे हैं उनको। ठीक है ना, करीब जा करके चीज़ों को देखेंगे तो ये सारी कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाएंगी। पर्दा है या नहीं, पर्दा है या नहीं है, क्लियर प्लीज, यानी क्लियर हो गया आपको, उम्मीद है, इसलिए कि मैंने मिसाल तो दी है, तो उसके बाद और क्या मजीद मैं आपको मिसाल दूँ। भाई पड़ोसी से पर्दा करती हैं, कजन से पर्दा नहीं करती, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द कंक्लूजन, कंप्यूटर साइंस वालों से, पर्दा विद पड़ोसी एंड नो पर्दा विद कजन्स इज इक्वल टू, क्या नतीजा निकलेगा अगर एंड का लगाएं तो, क्या नतीजा निकलेगा, वन आएगा कि जीरो आएगा, ये एंड का है, एंड वाली लॉजिक लगती है। ठीक है, तो पर्दा विद पड़ोसी नो पर्दा विद कजन्स इज इक्वल टू नो पर्दा। ठीक है, ये नतीजा ये निकला कि आप पर्दा नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो पर्दा जो होता है ना वो हर नामहरम से होता है, ये नहीं होता कि किसी नामहरम से कर रहे हैं और किसी नामहरम से नहीं कर रहे हैं, तो मैं पर्दा तो कर रही हूँ मैं तो, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ बेशक मुश्किल है, हाँ भाई अम्मी नहीं करने देती, अब्बू नहीं करने देते पर्दा, और ये बड़ा मुश्किल है, वो तो भाई बहन थे अब एकदम से ना गैर कैसे हो गए, तो ये गलत फहमियाँ जो है इनको रिजॉल्व करने में ज़ाहिर टाइम तो लगता है, और अगर बहुत ज़्यादा कल्चरल प्रेशर हो, घर का प्रेशर हो, तो अपने आप को मजबूत बनाना और इन सब प्रेशर्स का मुकाबला करना, ऑफ कोर्स इसके अंदर टाइम लगता है। ठीक है ना, तो उसके लिए जो है वो आपको नियत कर लेनी होती है कि हाँ बेशक जो है वो मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन हुक्म को तो मैं मान रही हूँ ना कि हाँ ये हुक्म है। ठीक है ना, तो अब आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, और अल्लाह ताला से मैं मदद भी मांगती रहूंगी। ठीक है, तो अल्लाह ताला यकीनन मदद करेंगे, और आपके इस इखलास को देखते हुए आपके लिए अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमा देंगे। ठीक है, अल्लाह ताला रास्ते भी बना देंगे, अल्लाह ताला रास्तों पर हेल्प करने वाले भी बना देंगे। ठीक है ना, लेकिन जो लोग ये करते हैं या नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, ये तो होता ही नहीं है पर्दा, कजन्स के साथ कैसा पर्दा भाई, वो तो भाई बहन होते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर कभी भी जो है ना वो तौफीक नहीं मिलती, क्योंकि ये तो इनकारी लोग हैं ना, ये तो मुनकर हैं, काफिर नहीं हुए हैं अभी, इनको पता नहीं है कि ये क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी ये काफिर नहीं कहलाते, लेकिन इनकार तो कर रहे हैं ना शरीयत के हुक्म का, तो ऐसे लोगों को कहाँ पे फिर आगे जाकर के तौफीक मिलेगी, ऐसे लोगों को कहाँ से मदद मिलेगी अल्लाह ताला की तरफ से। ठीक है, तो कजन की तशरी क्या है, ये भी आपको करके बताएं कि कजन किसको कहते हैं, जो खाला के बच्चे होते हैं, पुप्पी के बच्चे होते हैं, मामू के बच्चे होते हैं, और चचा ताया के बच्चे होते हैं, उनको कजन्स कहते हैं। महरम या नामहरम के बीच पर्दे को थोड़ा डिफाइन कर दें, माशाल्लाह अच्छी बात है सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो इतना लंबा चौड़ा लिख दिया है। अच्छा, महरम और नामहरम के बीच पर्दे को थोड़ा डिफाइन कर दें, मैं आपका सवाल ही नहीं समझा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, नामहरम के बीच पर्दा, पर्दे की तफसीलात वैसे जरूरी है कि पढ़ें, ये फराइज में से है, जिस तरह रोजा फर्ज है ना, माशाल्लाह सारे ईमान वाले रोजा रख रहे हैं ना, ठीक है, तो उसी तरह पर्दा भी फर्ज है, ये कोई अलग चीज नहीं है, कोई लेस ऑफ अ फर्ज नहीं है, नमाज ज्यादा और ज्यादा फर्ज है और रोजा कम फर्ज है, या पर्दा ज्यादा फर्ज या कम फर्ज है, ये फर्ज है राइट, और जो फर्ज नहीं करता है वो गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब हो रहा होता है। ठीक है, तो पर्दे को सीख समझ लें। ठीक है, अब ये सवाल आपने जो किया है कि अब पर्दा आपको समझाऊं, तो उसके लिए अभी फिलहाल आपको मैं वो पॉइंटर दे देता हूँ कि इंशाल्लाह मारुफुल कुरान आपके पास होगी, या जो लिंक्स भेजे हुए हैं तो इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। ठीक है, मारुफुल कुरान, तो उसमें आप निकालें सूरह अहजाब, ठीक है, वॉल्यूम नंबर 7 के अंदर सूरह अहजाब है। ठीक है, सूरह अहजाब के अंदर मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने बहुत बेहतरीन अंदाज में पर्दे के मामले को समझाया। ठीक है, और फिर हमने पिछले जो रमजान मुबारक में क्लासेस करी है सूरह नूर के ऊपर, गालबन पिछले से पिछले रमजान में सूरह नूर के ऊपर जो क्लासेस करी थी उसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, तो उसके अंदर मारुफुल कुरान ही से पढ़ाया था, सूरह नूर के अंदर भी पर्दे के अहकाम आते हैं और सूरह अहजाब के अंदर भी पर्दे के अहकाम आते हैं। ठीक है, तो दोनों को हमने ज्वाइन करके फिर उस क्लास के अंदर समझाया था। तो वो सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, आप किताब खोलें, रिकॉर्डिंग्स को प्ले करें और इस फर्ज को जो है वो समझना शुरू कर दें। अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे, और जो बात समझ में ना आए वो पूछ लें। ठीक है, व्हाट्सएप अल्लाह ताला ने दिया है ना, तो उसका फ़ायदा सही तरीके से इस्तेमाल करना तो यही है कि दीन को सीखने के लिए उस व्हाट्सएप को इस्तेमाल करें। जॉइंट फैमिलीज में पर्दा कैसे करें? जॉइंट फैमिलीज जो होती हैं जिनके अंदर ना महरमों के साथ एक ही घर के अंदर रह रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो है ना वो इंटरेक्शन को सबसे पहले ख़त्म करना होता है। बातचीत, हंसी मजाक, साथ बैठना, राइट, इसको सबसे पहले ख़त्म करना होता है। आप मजबूरी है, फाइनेंशियली आप अलग अलग घर नहीं कर सकते हैं, लोग नहीं करने दे रहे हैं, शौहर नहीं करने दे रहे, बहुत से शौहर भी ऐसे होते हैं अल्लाह हिदायत अता फरमाए, वो पर्दा नहीं करना करने देते अपनी बीवियों को। ठीक है, पता नहीं अल्लाह के सामने कैसे जाएंगे, क्या कैसे जो है वो मतलब समझ में नहीं आती है, बात मुश्किल है मतलब समझना, लेकिन तो मजबूरियाँ होती हैं इस तरह की। तो ऐसे में जो है ना वो आप बातचीत बंद कर दें, राइट, और अल्लाह का हुक्म समझ करके बंद करें। और ये बात याद रखें कि सास का हुक्म और ससुर का हुक्म तो क्या, अपनी अम्मी और अब्बू का हुक्म जो है वो अल्लाह के हुक्म के ऊपर नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो अल्लाह का हुक्म समझ करके बातचीत इंटरेक्शन बंद कर दें, साथ बैठना बंद कर दें, राइट, और तफरी और शुगल, और कोशिश करें कि एक टेबल के ऊपर खाना भी छोड़ दें। उमूमन जो है वो लोग जो है वो पीछे पड़े हुए होते हैं कि नहीं, खानदानों में मोहब्बतें ख़त्म हो जाएंगी और फलाना ढिमकाना ख़त्म हो जाएगा, वो अपने आप को खुदा से ज़्यादा बड़ा समझते हैं असल में। ठीक है, क्योंकि वो समझते हैं कि जी खुदा के हुक्म को तोड़ करके जो है ना वो हम मोहब्बतें कर सकते हैं। नहीं, ये दिल जो है ना ये हमारे बस में नहीं होता, ये दिल अल्लाह के बस में होता है, अल्लाह के काबू में होता है। ठीक है, दिल के अंदर मोहब्बत होती है और दिल के अंदर नफरत होती है, ये अल्लाह के कंट्रोल में होती है। ये कैफियत हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारी अकल है जो हमें अल्लाह ताला ने दी है, ये जिसकी बुनियाद पर हम फैसला करते हैं कि हमने अल्लाह का हुक्म मानना है कि अल्लाह का हुक्म नहीं मानना है। हमारा दिल हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब अल्लाह के कंट्रोल में ना, तो जब अल्लाह ताला के साथ नाफरमानी का मामला करते हैं, अल्लाह ताला के साथ बगावत का मामला करते हैं, तो अल्लाह ताला नफरतें दिलों में भर देते हैं, मोहब्बतों को निकाल देते हैं, नफरतों को भर देते हैं दिलों के अंदर। ठीक है, तो ये बातें बिल्कुल भी जो है ना उस मानने की जरूरत नहीं है कि मोहब्बतें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग करें और फिर जो है वो एक कोशिश करना शुरू कर दें कि जी लंबी चादर जो है ना वो आप ओढ़ करके रहें। ठीक है ना, पूरे अपने वजूद के ऊपर जो है वो, ठीक है चेहरे के ऊपर अगर नहीं भी डाल सक रही हैं तो एक तो आमना सामना करें ही ना। ठीक है, लेकिन अगर आमना सामना हो भी रहा है ना तो बाकी जो है ना अपने आप को कवर करके रखें। ठीक है, और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फिर अल्लाह ताला की तरफ से मदद भी आएगी और अल्लाह ताला आपके लिए हालात बनाएगा। ठीक है, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स के अंदर भी इस तरीके से कोशिशें शुरू कर दें, अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे। जी, अहले हदीस को फिरका कहा जाएगा या मसलक? अहले हदीस जो जो होते हैं, तो इसमें जो हमारे अकाबिर उलमा का जो मौकफ है उसी को हम आपके सामने बस रिलेट कर सकते हैं कि वो मसलक ही की हद तक इसको रखते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ सीनियर उलमा किसी फर्ज पर, और हम उन्हीं को फॉलो करने के एजाज हैं, किसी फर्ज पे अमल ना करना और सिरे से उस हुक्म के होने का इनकार करना, ये दोनों अलग गुनाह है। हुक्म से इनकार कुफ्र है। हुक्म से इनकार डिपेंड करता है कि वो हुक्म जो है ना वो किस दर्जे वाला हुक्म है। ठीक है, यानी मुतवातिर हदीसों से जो बात साबित होती है, ये अब जाहिर है देखें, अब ये इल्मी तफसीलात आ जाती है ना, अब ये इल्मी तफसीलात जो होती हैं वो हाई लेवल और सुपरफिशियल किस्म की व्यू करने से बातें आसानी से समझ में नहीं आती है, टाइम लगता है। ठीक है, तो जो नए लोग हैं जो अभी इस सिलसिले में जुड़े हुए नहीं है तो उनको शायद ये बातें समझ में ना आ रही हो, लेकिन फिर भी आपको इतना अंदाजा तो होगा ना कि हाँ भी तफसीलात होती हैं। तो इस नियत से खाली बता रहे हैं कि अगर कोई हुक्म जो है वो यानी मुतवातिर अहदीस से साबित है तो उसका जो इनकार करने वाला होता है वो तो काफिर हो जाता है, स्ट्रेट काफिर। ठीक है, लेकिन हर हुक्म जो है वो इस तरीके से नहीं साबित हुआ होता, कुछ जो है वो मशहूर हदीसों से साबित होते हैं, कुछ जो है वो खबर वाहिद हदीसों से साबित होते हैं, तो उनके फिर मुख्तलिफ मुख्तलिफ दर्जात हैं कि انکار کرنے والا بندہ جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ وہ فاسق کہلاتا ہے، کافر نہیں کہلاتا. اب یہ ساری علمی تفصیلات ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ہر ہم جیسے بندے جو ہیں، ہم جیسے لوگ جو ہیں، وہ چونکہ علماء کی کیٹیگری میں ویسے بھی نہیں آتے، تو اس وجہ سے نا ان معاملات کو سمجھنے کے لیے علماء کے ساتھ ایک مستقل کا رابطہ ضروری ہوتا ہے. دماغ پر بھی ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا، اسپیشلی ڈیورنگ مراقبہ، یہ ہمارے کنٹرول سے باہر کیوں ہو جاتا ہے؟ میں نے کنٹرول دماغ کے اوپر ہے، دماغ کے اوپر تو تھوڑی کنٹرول ہے، عقل کے اوپر کنٹرول ہے. عقل الگ چیز ہوتی ہے، دماغ الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو مراقبے میں جو دماغ میں خیالات آتے رہتے ہیں نا، تو وہ دماغ کا مسئلہ ہوتا ہے، عقل کا مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو عقل ایک الگ چیز ہے، ہم عقل کی بات کر رہے ہیں. مردانہ زنانہ الگ بیٹھک رکھنے سے بھی بہت آسانی ہو جاتی ہے پردے میں. ہاں، اگر آپ کے گھر کے اندر ایسا اویلیبلٹی ہے کمروں کی، جیسے سعودی عرب میں ماشاءاللہ گھروں کی کنسٹرکشن ہی اوریجنلی ایسی ہوتی تھی، اب تو خیر یہاں پر بھی جو ہے وہ نان مسلم طریقوں سے جو ہے گھر بنتے ہیں، لیکن پہلے جو الگ الگ بیٹھک بنی ہوئی تھی تو اس طرح سے آسانی ہو جاتی ہے. خیر آسانی تو ہو جاتی ہے، لیکن ہر کوئی اس آسانی کو پھر شریعت کے لیے استعمال تو نہیں کرتا نا. یہ تو نہیں ہے کہ گھر اچھا ہے تو اس کو اس میں شریعت کی پابندی بھی ہو رہی ہے، رائٹ. جو لوگ پابندی نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ سعودی عرب میں بھی کوئی پابندی نہیں کرتے، رائٹ. آپ کو پتہ ہی ہوگا اس بات کا. تو آپ کی اجازت سے کرنا چاہتا ہوں یہ کام، واٹس ایپ کے ذریعے اگر علماء کرام کی طرف سے کچھ پوسٹ یا ویڈیوز ملائی ہوں انجینئر علی مرزا فتنے کے بارے میں، کیا میں وہ علماء کرام کے پوسٹ شیئر کر سکتا ہوں واٹس ایپ گروپ یا پرسنل میں، کیونکہ میرے انجینئرنگ کالج کے کالج میٹ انجینئر علی مرزا فتنے سے متاثر ہوئے ہیں. جب میں نے علماء کرام کی طرف سے ایک پوسٹ آیا انجینئر کے تعلق سے. بھائی آپ کے کوئی اگر جاننے والے کسی فتنے کا شکار ہوئے ہیں تو آپ ان سے اپنی جو پاسٹ ریلیشن شپ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. اگر وہ ہو سکتا ہے آپ کی بات مان جائیں، سمجھ جائیں آپ کی بات، اور وہ توبہ کر کے جو ہے وہ حق پہ واپس آ جائیں، اور اگر نہیں آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کتنا کسی کو پرسو کر سکتے ہیں. آپ کسی ایسے جاننے والے کو، دوست کو، رشتہ دار کو، تو اس کے ساتھ جو پرسنل لیول کے اوپر ایک تبدیل کا کام ہوتا ہے، تو یہ تو صحابہ کی سنت ہے. صحابہ اس طریقے سے کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ دین کے بارے میں باتیں کسی نہ کسی طریقے سے پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی توفیق دی. کیا کون صاحب ہیں؟ انجینئر علی مرزا کے نام سے ایک لڑکا ہے جو صحابہ کے خلاف بولتا ہے اور اس وقت کے اکابر علماء کے خلاف بھی بہت برا بھلا بولتا ہے، تو یہ قادیانیت نہیں ہے؟ مطلب علماء کے خلاف برا بولنا جو ہے وہ قادیانیت بن جائے گی. بھائی قادیانیت کی ایک الگ ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے انڈائریکٹلی. بھائی انڈائریکٹلی سپورٹ کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ قادیانی بن جائے گا. قادیانی کی تو ایک الگ تعریف ہے نا، الگ ڈیفینیشن ہے، تو وہ جو اس ڈیفینیشن میں پورا اترے گا اسی کو قادیانی کہیں گے نا. تو آپ شاید الحاد یا آپ ملحد اور قادیانی کو ذرا کنفیوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ قادیانی ایک اسپیشل ٹائپ آف ملحد ہے. ملحد جو ہے نا ایک جنرل ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے. تو وہ دے آر ناٹ ون اینڈ دا سیم. مطلب قادیانی ملحد ہوتے ہیں، لیکن ہر ملحد قادیانی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو ملحدوں کی اور بھی بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں. علماء کرام کے پوسٹ، اور یار یہ پوسٹ وغیرہ کے بارے میں کتنا پوچھیں گے، الگ سے پوچھ لیے گا نا. غامدی صاحب کے متعلق بھی تھوڑا بتائیں. غامدی صاحب کے جو کافی علماء نے ان کے نظریات اور کتابوں کے اوپر جو ہے وہ باتیں لکھی ہیں، باقاعدہ کتابیں بھی شائع کی ہیں، رسالے بھی شائع کی ہیں، تو اس کی تفصیلی مطالعے کے بعد تو یہی بات کنفرم ہوتی ہے کہ ان کے بھی جو ہے نا جو نظریات وغیرہ ہیں وہ الحاد کی ہی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، زندیقیت اور الحاد کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کا معاملہ کافی جو ہے نا وہ فی شقاق بعید، یعنی بہت دور یہ حد تک پہنچا ہوا ہے. بہرحال ابھی لیکن ان کے اوپر ایسا کوئی اوپن کلیئر فتویٰ بھی نظر نہیں آیا بڑے اکابرین کی طرف سے کہ وہ काफिर हो चुके हैं, जैसे कि कादियानियों के बारे में आया है, उस तरह से इनके बारे में भी ऐसी चीज़ आई नहीं है। तो डिपेंड करते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, रुकमा जो है वो जिस नज़र से चीज़ों को देख रहे होते हैं वो हर कोई जो है वो उस नज़र से नहीं देख पाते हैं, उस वजह से ज़रा तहम्मुल के साथ उनकी गाइडेंस का इंतजार करना चाहिए। बहरहाल अच्छा सवाल आप लोगों के काफ़ी और हैं, अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे। हनफी, ये हनफी कहाँ से आ गया बीच में? क्या गामदी साहब का मसलक डिफरेंट है? बाज़ लोग कहते हैं कि उनका मसलक हनफी नहीं है। हाँ, उनका मसलक डेफिनेटली हनफी तो नहीं है, मतलब वो तो मतलब एक बिल्कुल ही अलग किस्म की उन्होंने चीज़ बनाई हुई है ना, तो वो तो यानी बहुत मेजर जो उनके इश्यूज हैं वो ये हैं कि कुरान को समझने के लिए आपको हदीसों की ज़रूरत नहीं है, राइट? कुरान को समझने के लिए सहाबा कराम की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्योर अरेबिक लैंग्वेज की बुनियाद पर आप कुरान को समझें और उसके ऊपर अमल करें। अब इस बुनियाद पर फिर जब करते हैं तो फिर वो तो अपनी मनमर्जी और नफ्स और शैतान फिर आ जाते हैं ना, वो नफ्स और शैतान के आयात तक आप लोग इस हदीस को पहुंचने नहीं दे रहे, वहाँ पे सारी बातें आनी थी इंशाल्लाह, ठीक है? तो वो जब इस तरह से कोई बंदा करता है ना कि जी मैं और मेरी समझ और बस, ठीक है, तो फिर वो शैतान साहब जो है वो फारिग तो नहीं बैठे हैं, वो तो अपना काम कर रहे होते हैं ना, ठीक है? तो फिर वो वहाँ पे फिर ये सब शुरू हो जाता है, नफ्स और शैतान वाला मामला शुरू हो जाता है, तो फिर वो उसमें हनफी वाला मामला फिर नहीं रहता, वो तो एक अलग ही दीन फिर मिल जाता है ना, ठीक है? तो चले मैं अगली आयत शुरू कर रहा हूँ कि वयौम यअज्ज़ुज़्ज़ालिमु अला यदैही यकूलु या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूलि सबीला। तो खुलासे तफसीर इसके बारे में लिखते हैं कि जिस रोज़ जालिम यानी काफिर आदमी गायत हसरत से अपने हाथ काट काट खावेगा और कहेगा कि क्या अच्छा होता मैं रसूल के साथ दीन की राह पर लग लेता, हाय मेरी शामत। अच्छा, तो रसूल के साथ राह पर लग लेता, रसूल की मैयत अख्तियार कर लेता, राइट, उनके रास्ते के ऊपर चलना शुरू हो जाता। तो इसके बारे में तो तर्जुमे में बात हो चुकी थी कि वो किस तरह से इस दुनिया में हम दूसरों को काटते हैं तो वहां पर फिर अपने ही हाथ को बंधाने में आदमी काटेगा, क्योंकि दसूर का तरीका क्या है कि दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाओ, दूसरों के रास्ते को काटो नहीं, ठीक है ना, अनलेस के कोई ऐसा मामला हो जिसके ऊपर तुम्हारे पास क्लियर हुक्म मौजूद हो अल्लाह का, ठीक है, तो उसकी बुनियाद पर किसी के रास्ते को काटना, उसकी तो अल्लाह के हुक्म की वजह से तुम काट रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर उसके बगैर तुम किसी और वजह से तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता, ये तुम्हारे साथ उसका मामला अच्छा नहीं था, या कोई और ऐसा जाती किस्म के जो तुम्हारे इश्यूज हैं तो इस वजह से दूसरों को काटोगे तो फिर वो जुल्म होगा और उसकी फिर तुम्हें सजा मिलेगी। अगली आयत में फरमाते हैं या वही लता लई तन्नी लम अतखिज फुलानन खलीला। तो ये जो एक आयत है, अब ये इसमें इतनी सारी तफसील हो सकती है कि देखें, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से कि क्या अच्छा होता कि मैं फुला शख्स को दोस्त ना बनाता, उसने करा क्या, लकद अदलनी अन जिक्री बाद इज जानी वकान शैतान लिल इंसान खजूला। उस कमबख्त ने मुझको नसीहत आए पीछे यानी नसीहत आने के बाद उससे बहका दिया और हटा दिया, ठीक है, या वही रहता नई या वही लता, हाँ ये तो हो गया, वकान शैतान लिल इंसान खजूला, और शैतान तो इंसान को ऐन वक्त पर इमदाद करने से जवाब दे देता है, चुनाचे उस काफिर की इस हसरत के वक्त उसने कोई हमदर्दी ना की, गो करने से भी कुछ ना होता, सिर्फ दुनिया ही में बहकाने को था, ठीक है, यानी उसने कोई हमदर्दी ना करी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो हमदर्दी करना शुरू कर देता, यहाँ मुझे बड़ा अफसोस है कि आप जो है वो जहन्नुम में जा रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस है कि आप जो है वो इस वक्त बड़ी तकलीफ में हैं, तो क्या हो जाता है इससे, क्या इसका जहन्नुम में जाना जो है वो रुक जाता, ठीक है, क्या ये जो है वो VIP लाउंज में पहुंचा दिया जाता, नहीं, उसकी हमदर्दी अगर करता भी तो भी उसको कोई फायदा नहीं होता। लेकिन ये शैतान तो इतना बदबخت है कि ये झूठे बोल, जिसको कहते हैं ना झूठे मुंह हमदर्दी करना, ये तो झूठे मुंह हमदर्दी भी नहीं करेगा क्यामत के दिन, ये तो साफ मुकर जाएगा, ये तो साफ जो है ना वो यानी दुश्मन बन जाएगा, बिल्कुल इनकार कर देगा, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हें, तुम खुद अपनी मर्जी से गुमराह हुए हो, मैंने कोई तो तुम्हें गुमराह नहीं किया, मेरे ऊपर इल्जाम मत डालो। ठीक है, अब ये जो तो 3 आयात हैं इनकी तफसील में चंद बातें थी कि जो कहा ना कि या वैलता ए काश कि मैंने ऐसे शख्स को अपना दोस्त ना बनाया होता, फुलानन। ठीक है, तो वैसे तो फुलाने की तफसीर हम आरफ मसाइल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर हमें जरा अहम बातें जरा रिमाइंड कराने की एक दूसरे को जरूरत है। ठीक है, कि ये जो दोस्त वाला मामला होता है ना, तो ये दोस्त जो होते हैं इंसान के दो किस्म के होते हैं। ठीक है, एक तो ये कि भाई अच्छे और बुरे, ठीक है ना, ये तो एक आम हमें बात पता ही लगती है ना, पता ही है सबको कि अच्छे भी दोस्त होते हैं बुरे दोस्त भी होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो दोस्ती इंसान करता है ना किसी से, तो उसकी एक और भी कैटेगराइजेशन होती है। ठीक है ना, वो क्या कैटेगराइजेशन होती है, वो होती है कि एक होते हैं इंसानी दोस्त। अब हम एक्चुअली हम ये ले लें कि चूंकि यहाँ पर बुरे दोस्त की बात हो रही है ना, कि भाई कयामत के दिन अफसोस कर रहा है ना कि काश कि मैं इसको अपना दोस्त ना बनाता, यानी बुरे बंदे को अपना दोस्त ना बनाता। ठीक है, तो अब बुरे दोस्त की बात हो रही है, तो बुरे दोस्तों में भी फिर फर्दर दो क्लासेस होती हैं, दो कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी होती है इंसान बुरे दोस्त, राइट, जो इंसान होते हैं, और दूसरी होती है शैतान बुरे दोस्त, बल्कि शैतान भी नहीं, जिन का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, जिन बुरे दोस्त। ठीक है ना, तो जो इबलीस है राइट, ये है जिन, ओके, और ये बुरा दोस्त जिन कैटेगरी वाला। ठीक है, और इसके अलावा इंसान की कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारे बुरे दोस्त होते हैं। ठीक है, तो वो तो उनको इधर भेजें, वो बैठ जाएंगे थोड़ी देर। अच्छा ठीक है, तो इंसानों के अंदर भी बुरे दोस्त होते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है कि जो जिन बुरा दोस्त होता है ना, जिन कैटेगरी वाला बुरा दोस्त, तो उसको अल्लाह ताला ने जो जनरल इजाजत दी हुई है, ठीक है ना, जो जनरल छूट दी हुई है उसके उनका जो सबसे बड़ा था इबलीस, उसकी दरख्वास्त के ऊपर मोहलत दी हुई है अल्लाह ताला ने जिनों को। ठीक है, जिन बुरे जिनों को, वो क्या है कि वो वसवसे डाल सकते हैं इंसानों के दिलों में या इंसानों के जहनों में। ठीक है, वो आइडियाज डाल सकते हैं, सॉलिड आइडियाज के भाई अब ये बुरा काम कैसे करना है। ठीक है ना, वसवसे और आइडिया में क्या फर्क है कि वसवसा तो एक जैसे होता है ना, जैसे कि चल रहा है एक उल्टे सीधे किस्म के ख्याल आ रहे हैं, नॉट मेकिंग सेंस, लेकिन मुस्तकिल जो है ना, वो आपका दिमाग जो है ना, वो फंसा हुआ है उन ख्याल के अंदर। ठीक है, उसके लिए वसवसे का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो बाकायदा एक आइडिया का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, वो क्या है कि बाकायदा पूरा प्लान भी आपके सामने बना करके रख दे कि अब ये करो, फिर उसके बाद ये करो, फिर उसके बाद ये करो, राइट, ये पूरा आइडिया की कैटेगरी में आएगा। तो ये जिन्हों को इख्तियार दिया गया है कि वो ये वाले काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंसान बुरा दोस्त जो होता है, वो जो है वो सिर्फ वसवसे वाला काम नहीं करता, बल्कि जब इंसान को कोई बुरा, यानी इंसान बुरे को इंसान दोस्त बना लेता है ना कोई, तो अब ये जो है वो हाथ पकड़ करके भी बुरा काम करवाता है, जैसे कि अरे बस खत्म करना। तो इसके बारे में फिर हमारे जो हजरत खास तौर पर वो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को नकल करते हैं उनकी किताब से, कि हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने लिखा है गालिबन अपनी अहयाल उलूम के अंदर कि जो बुरा दोस्त होता है, क्या मतलब इंसान बुरा दोस्त, वो सांप से भी ज्यादा बुरा होता है। तो एक कैसे सांप से ज्यादा बुरा बुरा होता है, वो इसलिए क्योंकि सांप अगर किसी को डस लेता है तो वो कब्र के पेट में चला जाता है, यानी मर जाता है, कब्र में चला जाता है, लेकिन बुरा दोस्त जब किसी को डस लेता है तो वो जहन्नुम के पेट में चला जाता है। ठीक है, और फिर आगे लिखते हैं कि बुरा दोस्त शैतान से भी ज्यादा बुरा, यानी इबलीस शैतान, जिन शैतान से भी ज्यादा बुरा। ठीक है, जिन बुरे दोस्त से भी ज्यादा बुरा। तो वो कैसे, वो ऐसे कि जो जिन बुरा दोस्त होता है ना जिन्नों में, वो सिर्फ बुराई का ख्याल डाल सकता है, वो सिर्फ वसवसा डाल सकता है, लेकिन जो इंसान बुरा दोस्त होता है वो खाली ख्याल नहीं डालता, बल्कि हाथ पकड़ करके गुनाह करवाता है। चलो यार चलते हैं जरा, फिल्म देख करके आते हैं, चलो यार चलते हैं जरा उधर जो है वो ये वाली हरकत करके आते हैं, ये जरा ट्राई करके आते हैं, ये मजे लेकर के आते हैं, ठीक है। तो वो जो है ना वो फिर बाकायदा कन्विंस करके जो है वो अपने साथ जो है वो अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर बिठा करके या गाड़ी के अंदर बिठा करके या ऐसे ही जो है वो हाथ पकड़ करके ले करके जाता है और काम करवाता है। तो ये जो बुरा इंसान दोस्त होता है ना, ये बुरे शैतान दोस्त से ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो एक तो ये बात, अभी चले आज सारी बात तो नहीं हो सकती इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन ये जो बुरा इंसान दोस्त होता है ना, तो फिर ये जो है वो ले डूबता है इंसान। इसके ऊपर शायद इसका एक शेर याद आ रहा था, तो कल तक छोड़ने के बजाय वो आज ही आपके सामने रख देते हैं कि वो एक शेर है कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, ठीक है। हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, यानी इस शैतान को, इबलीस को है, इसको पता होता है कि जी इसने तो जहन्नुम में जाना है, ठीक है ना, ये तो इसका तय हुआ हुआ है मामला। तो अब ये तो डूब चुका है, लेकिन ये अकेला नहीं डूबता, बल्कि ये जो जो इसको दोस्त बनाता है उसको साथ ले करके डूबता है, ठीक है। बिल्कुल ये मामला जो है वो इन इंसानों का भी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आजकल जो बातें, एक तो आजकल जो जो चल रहा है ना मामला, ये कोरोना शोरोना वाला, ठीक है, एक तो इतने इसके अंदर मुख्तलिफ वर्जन आ रहे हैं और इतने लोग जो है वो मुख्तलिफ किस्म की इसके जो है वो थ्योरीज पेश कर रहे हैं, किसी को कंस्पिरेसी थ्योरी कहा जाता है, किसी को फलानी थ्योरी कहा जाता है, राइट। लेकिन बहुत सारे मुख्तलिफ चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ जो हमारे बहुत ही करीबी दोस्त, डॉक्टर्स, रिश्तेदार, ऐसे लोगों से जो बातचीत करके ना एक पिक्चर सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि जो वेस्ट के अंदर ये वाले सिलसिले चल रहे हैं ना कोरोना के, तो वहां पर तो वाकई ये वबा की सूरत हाल है और बहुत लोग मर रहे हैं। डायरेक्टली इसकी वजह से शायद नहीं मर रहे कि कोरोना कोरोना वायरस किसी को लग गया तो अब जो है वो बंदे ने मरना ही है, जैसे कि ट्यूमर, कैंसरस ट्यूमर हो गया तो अब बंदा जो है वो बिलासर मर ही जाता है, अनलेस के कोई बहुत ही ऐसे केस होते हैं जो कि ट्रीट हो जाते हैं। लेकिन कैंसर इज अ मोहलिक बीमारी, राइट, और हेपेटाइटिस सी जो है वो मोहलिक बीमारी है, और इस तरह की जो चंद, राइट। तो कोरोना ऐसी मोहलिक बीमारी नहीं है, लेकिन समहाउ इट इज कॉजिंग, कुछ ट्रिगर कर रहे हैं जिसको कि अभी तक ये डॉक्टर्स इवन अमेरिका यूरोप में समझ नहीं पाए हैं कि ये क्या चीजें ट्रिगर, किस तरह से वो ट्रिगर कर रहे हैं कि जिसकी वजह से इंसान के ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाते हैं, राइट। और उसको जो है ना वो बिल्कुल ऐसा मामला हो जाता है कि जैसे कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, ठीक है ना, और इस तरीके से जब ऑक्सीजन जो है वो अब ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन उसकी बॉडी के ऑर्गन्स को नहीं पहुंच रही है, तो वो ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से ना फिर वो बंदा मर जाता है, बहुत थोड़ी देर में मर जाता है। तो ये तो वाकई ऐसा हो रहा है वहां पे, इसका इनकार करना जो है ना फिर वो बेवकूफी कहलाएगी कि अभी आप तो हर चीज का इनकार कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो यही लोग बता रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में ऐसा मामला नहीं है, राइट, शायद इंडिया में भी ऐसा मामला नहीं है, और शायद बाकी जो ईस्ट के कंट्रीज हैं उनमें भी ऐसा मामला नहीं है कि ये जो है वो इस तरीके से ट्रिगर कर रहा है ऑर्गन फेलियर्स को, और ऐसे जो है वो लोग तेजी के साथ मर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, क्योंकि हमारे ईस्ट वाले लोगों ने वेस्ट वाले लोगों को दोस्त बनाया हुआ है ना, ठीक है, तो अब वेस्ट वाले जो है वो दोस्तों का तो वही मामला है, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, तो भाई हमने अपने मुल्क में लॉकडाउन लगाया है ना, तो दोस्त साहब आपको भी लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप तो हमारी मान करके चलते हैं ना, आप तो हमसे जो है वो गाइडेंस लेते हैं, राइट, तो फिर आपको भी सब कुछ करना पड़ेगा। जी ठीक है, अब कर रहे हैं, अब वो मसला नहीं भी है फिर भी कर रहे हैं, तो बीमारी शीमारी का तो ज्यादा बड़ा मसला कोई था नहीं, इकोनॉमी जो है वो सारी की सारी ठप हुई भी है, और जाहिर है फिर वहां पर तो चलो भाई वो जब किसी की नौकरी जाती है तो फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट फाइल करता है, और इतने महीनों तक तो इतने सारे उसको डॉलर मिलते रहते हैं, जो भी छपा छाप छाप के डॉलर देते हैं, जैसे भी देते हैं, लेकिन डॉलर मिलते हैं, और उनको जो है वो फूड स्टैम्प्स मिलते हैं, ना जाने क्या क्या मिलता है, उनका सिलसिला चलता रहता है कुछ अर्से तक कम अज़ कम, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जब ये सब कुछ होगा इंडिया में और पाकिस्तान में, तो फिर तो आपको पता है फिर खुदकुशियाँ जो है वो बहुत, यानी रिवाज उसके बहुत बढ़ गई हैं, और न जाने क्या क्या उसके बाद तमाशे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बुरे दोस्त का जो है ना फिर वो ऐसे ही होता है, इंडिविजुअली भी जो है वो बुरा दोस्त आपको साथ लेकर के डूबता है, और कलेक्टिवली मुल्की लेवल के ऊपर भी बुरे दोस्त जो अपना लेते हैं ना वो फिर आपको साथ लेके डूबते हैं। तो इस वजह से हमारा जो दीन है और अल्लाह ताला का कुरान है वो बिल्कुल निप द इविल इन द बट, बिल्कुल बुनियाद ही को जो है ना वो वहीं पे बुराई को रोकता है कि बुरा दोस्त बनाना नहीं, वरना क़यामत के दिन तुम्हें बहुत इसके ऊपर तुम्हें अफसोस करना पड़ेगा और ये जो है ना तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। बाकी इसके ऊपर मजीद तफसीलात हैं, दोस्त कैसे बनते हैं और अपने बच्चों को बुरे दोस्तों से हमने कैसे बचाना है, अपने आप को कैसे बचाना है, ये मजीद तफसीलात हैं इंशाल्लाह हम अभी काफी पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ की बात की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपके जो सवाल है वो मैं नहीं पढ़ सका हूं, आप इसको सेव करके अगर व्हाट्सएप भेज दें तो कल इंशाल्लाह उसका एड्रेस कर लेंगे।